नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति प्रताप सिंह और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पे हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार अजय मसंद। अजय जी, स्वागत है आपका।
नमस्कार शक्ति जी।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। लॉर्ड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत को इंग्लैंड ने 22 रन से हराया। शतरंज में भारत की आर वैशाली, हरिका द्रोणावल्ली, कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख फिडे महिला विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से शुरू। सबकी नजरें पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी पर। और विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह का कल 114 वर्ष की आयु में निधन। लॉर्ड्स में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के तीसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में कल भारत को इंग्लैंड ने 22 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही मेजबान इंग्लैंड ने 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त हासिल कर ली है। एक रिपोर्ट।
क्रिकेट का मक्का लॉर्ड्स का मैदान कल एक ऐतिहासिक मुकाबले का गवाह बना, जहां दर्शकों ने हार और जीत के बीच के अंतर में संघर्ष का वो जज्बा देखा जो दशकों में कभी कभार ही देखने को मिलता है। दूसरी पारी में इंग्लैंड के 193 रन के लक्ष्य के जवाब में बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय पारी शुरुआत से ही लड़खड़ाती नजर आई, पर इस बीच रविन्द्र जडेजा और उनके साथ निचले क्रम के बल्लेबाज मानो एक पल के लिए इंग्लैंड की जीत के आगे दीवार बन के खड़े हो गए हों। जडेजा 181 गेंदों पर 61 रन बनाकर लगातार के घातक गेंदबाजों का सामना करते दिखे, पर सामने से कोई भी बल्लेबाज उनका बखूबी साथ नहीं निभा सका और भारत की पूरी पारी 170 रन पर सिमट गई। जसप्रीत बुमराह ने 54 और मोहम्मद सिराज ने 30 गेंद खेलकर क्रीज पर टिकने के लिए शानदार जज्बा दिखाया। वहीं इंग्लैंड की ओर से दूसरी पारी में कप्तान बेन स्टोक्स और जोफ्रा आर्चर को 3-3 विकेट मिले। इससे पहले इस मुकाबले में भारत और इंग्लैंड दोनों की पहली पारी 387 रनों के स्कोर पर सिमट गई थी। श्रृंखला का चौथा मैच मैनचेस्टर में 23 जुलाई से खेला जाएगा और शुभमन गिल एंड ब्रिगेड की पूरी नजरें ये मैच जीतकर श्रृंखला में बराबरी करने पर होंगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
ये मैदान है उतना ही रोचक कल का मुकाबला रहा, कह सकते हैं कि जो एक हम कहते हैं T20 का रोमांच एकदम टेस्ट मैच की आखिरी गेंद तक उतर आया।
नहीं शक्ति जी, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा था कि जिस हिसाब से रविंद्र जडेजा और जो टेल एंडर्स खेल रहे थे, मुझे ये लगता है कि ये मैच चाहे वो 9 विकेट डाउन भी हो गया था तो इंडिया को खींच लेना चाहिए था मैच, क्योंकि ये डो और डाई सिचुएशन थी। तो रविंद्र जडेजा बीइंग द मोर एक्सपीरियंस्ड बैटर, ही इज अ गुड ऑलराउंडर, वेरी गुड ऑलराउंडर, तो उनको जो है पहल करनी चाहिए थी। और जितना उन्होंने मोहम्मद सिराज को बैटिंग एक्सपोज किया बैटिंग के लिए जबकि फास्ट बोलर्स बोल कर रहे थे, तो वो मुझे लगा कि वो थोड़ा सा एक ग्रे एरिया रहा। अगर वो जैसे शोएब बशीर थे या जो रूट भी बॉलिंग कर रहे थे या कुछ समय तक क्रिस वोक्स ने भी बॉलिंग करी थी, तो पहले के तो दो स्पिनर हैं बशीर और जो रूट, और बशीर तो इंजर्ड भी थे, तो अगर इनको अगर जब उनको उनका सामना कर रहे थे और फास्ट बॉलर्स इंप्लॉय नहीं किए थे इंग्लैंड ने, तो डेफिनेटली थोड़े दो चार अगर बिग हिट्स अगर मार सकते रविंद्र जडेजा और उसमें सफल हो जाते तो शायद इंडिया जीत भी सकता था। ये वेट करना कि हर ओवर में एक रन लेना और फिर दूसरी तरफ फिर आ जाना, वो एक थोड़ा सा अजीब सा टैक्टिक्स था। वो ड्रॉ के लिए तो कभी खेलना हो ही नहीं सकता था, बिकॉज एक अच्छी बॉल जाती और विकेट चटक सकता था और लास्ट विकेट गिर सकता था। तो अगर इतना ही एवरीथिंग, मतलब अगर इट केम डाउन टू दैट, तो मेरे ख्याल से मुझे लग रहा था कि रविंद्र जडेजा को रिस्क लेना चाहिए था। ऑल्दो उन्होंने 61 रन मारे और बहुत ही अच्छी शानदार इनिंग्स खेली और एक एंड को रोक के रखा काफी देर तक, लेकिन डेफिनेटली रविंद्र जडेजा को ये करना चाहिए था तो शायद और इंडिया के चांसेस बन जाते इस मैच को जीतने के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। और जिस हिसाब से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स और उसके अलावा जोफ्रा आर्चर, जो उनके दोनों जो पहला मैच खेल रहे थे, टेस्ट मैच खेल रहे थे आफ्टर अ गैप ऑफ नियरली 4 इयर्स, बिकॉज ही सफर्ड अ लॉट ऑफ इंजरीज, एल्बो इंजरी थी, बैक इंजरी थी, काफी सारी इंजरीज को उन्होंने फेस किया, 4 साल वो नहीं रहे टीम में, तो टेस्ट में तो जो आए जिस हिसाब से और जिस हिसाब से उन्होंने मोटिवेटेड बॉलिंग करी जोफ्रा आर्चर ने, और मेरे ख्याल से बेन स्टोक्स ने जो है ऑलराउंडर है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 44 ओवर फेंके इस टेस्ट मैच में, मतलब एक ऑलराउंडर 44 ओवर फेंके बहुत ही कम सुनने को मिलता है। उन्होंने जी जान लड़ा दी और उसका उनको फल जरूर मिला। तो मैं यही कहूंगा कि इंग्लैंड ने बहुत कमिटेड थे कल, और इंडिया की चूक भी हुई। जैसे मैं पहली इनिंग्स में अगर आप देखें तो जो शुभमन गिल और ऋषभ पंत का रनआउट था, ऋषभ पंत का जो रनआउट हो गया था, उससे एक जब प्लेयर अच्छे जा रहे थे, जब एक अच्छा एक मैं कह सकता हूं कि एक लीड बना सकते थे 50-100 रन की, तो उसका एडवांटेज वो लूज कर गए मेरे ख्याल से। अगर वो ऋषभ पंत वो रनआउट ना होते तो मे बी जो है थोड़ा सा डिफरेंट ही मतलब रिजल्ट आने की उम्मीद रहती।
जी बिल्कुल, कई सारे ऐसे मौके थे जहां पे अगर भारत ने शायद उस समय वो चूक ना की होती तो कल परिणाम कुछ और होता।
और भी था, जैसे सेकेंड इनिंग्स में भी काफी सारे इश्यूज हुए, जिस हिसाब से इंजरी डेफिनेटली ऋषभ पंत वॉज नर्सिंग एन इंजरी, जिस हिसाब से जल्दी जल्दी मारना चाहते थे, अगर वो थोड़ा सा 3-4 ओवर और टिक गए होते तो शायद खेल का परिणाम कुछ और ही होता।
जी बिल्कुल, ऋषभ पंत इस तरह के खिलाड़ी हैं, उन्होंने पहले भी साबित करके दिखाया है कि वो मैच को इतनी कठिन परिस्थितियों से आगे निकाल सकते हैं।
जी
अब बात करते हैं महिला क्रिकेट की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला का पहला मैच कल खेला जाएगा। T20 सीरीज को 3-2 से जीतने के बाद भारतीय टीम के इतिहास रचने के बाद पूरी तरीके से हौसले बुलंद हैं। और
जी हाँ, पहली बार T20 सीरीज इंग्लैंड सॉयल पे इंडियन विमेन ने जीती है, हरमनप्रीत लेड इंडियन, और इसमें सभी का कंट्रीब्यूशन रहा, स्पेशली जो स्पिनर्स रहे इंडिया के, इतने अच्छे स्पिनर श्री चरानी जो थी वो लेफ्ट आर्म स्पिनर, पहला सीरीज डेब्यू सीरीज खेल रही थी और उसी में उन्होंने 10 विकेट ले लिए। इनफैक्ट उन्होंने लास्ट मैच में विकेट नहीं लिया, लेकिन उन्होंने पहले के जो चार मैच हुए T20s के, उन्होंने उसी में ही 10 विकेट लेके, एंड शी वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज ये थी। उसके बाद राधा यादव थी, उसके बाद दीप्ति शर्मा थी, तो इन सबका स्पिनर्स का बहुत मेजर रोल रहा है इसमें जिताने में। और जो है हम देखते हैं कि अब इसको आगे ले जाएं, ODIs में भी जो है इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। 3-मैच ODI सीरीज, अगर ये 3-मैच ODI सीरीज जीत जाती है इंडिया तो एक बहुत ही बड़ा एक पॉजिटिव होगा, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में जो है T20 ODI वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, जिसके लिए एक बहुत बड़ा मोरल बूस्ट मिलेगा इंडिया को, और जो इन्होंने टाइटल आज तक नहीं जीती है वो शायद ये जीत जाए इस बार ऑन होम सॉइल।
जी बिल्कुल, भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए मोमेंटम हासिल करने का एक बहुत बड़ा मौका
है।
शतरंज में भारत की आर वैशाली, हरिका द्रोणावल्ली, कोनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख जॉर्जिया के बटुमी में फिडे महिला विश्व कप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। कल उनके क्वार्टर फाइनल के मुकाबले खेले जाएंगे। वहीं वंतिका अग्रवाल तीसरे दौर में हार करके बाहर हो गई। अगर इस परफॉर्मेंस की बात की जाए, कल मुकाबले होने हैं क्वार्टर फाइनल के, और कितने तैयार हैं भारत के 4 महारथी?
देखिए बहुत ही एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट इसमें से तो 3 तो ग्रैंड मास्टर्स हैं। कोनेरू हम्पी, शी बिकेम द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर इन द कंट्री। उसके बाद आर वैशाली ग्रैंड मास्टर हैं, उसके बाद जो है आपकी द्रोणावली हरिका भी ग्रैंड मास्टर है। तो 3 ग्रैंड मास्टर्स खेले, और ग्रैंड मास्टर्स की लेवल डिफरेंट होती है। अगर आपने नॉर्वे चेस देखा हो जो अभी दो महीने डेढ़ महीने पहले खत्म हुआ था, वहां पे भी जो है इट्स वन ऑफ द इलीट टूर्नामेंट्स, उसमें भी जो है कोनेरू हम्पी जो थी शी वॉज इन कंटेंशन फॉर द टाइटल बिफोर शी मतलब शी लॉस्ट एंड शी कुड नॉट। बट इसमें अपार्ट फ्रॉम द प्राइज मनी, जो $50,000 का प्राइज मनी एट स्टेक है फॉर द विनर, और भी बहुत बड़ी चीज जो स्टेक है, जो टॉप 3 यहां से निकल के जाते हैं वो विमेन्स वर्ल्ड कैंडिडेट्स में उनका जो है स्थान अपना ले लेंगे, सिक्योर कर लेंगे। और जो करंट रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है चाइना की जू वेंजुन, उसके साथ उनको खेलने का मौका मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा इंसेंटिव है, और मुझे जो लगता है कि जो टॉप की 2 प्लेयर्स जो मुझे अभी दिख रही हैं वो हैं आपकी कोनेरू हम्पी, जो एशियन गेम्स मेडलिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और साथ में डबल वर्ल्ड रैपिड चैंपियन भी हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा चांस लग रहा है। उसके बाद चांस लग रहा है मुझे वैशाली का, अच्छे फॉर्म में है, और उसके बाद जो है हरिका का इतना फॉर्म बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट क्वालिफिकेशन किया है, इसमें टाई ब्रेक के थ्रू नहीं गई हैं इस टूर्नामेंट में, तो मे बी शी इज इन अ वेरी गुड फॉर्म टू परफॉर्म वेल इन द वर्ल्ड कप एंड एडवांस टू द क्वार्टर फाइनल्स।
जी बिल्कुल, यहां से उम्मीद करेंगे कि भारत के अधिक से अधिक खिलाड़ी आगे के राउंड की तरफ बढ़ते हैं और एक अच्छे मुकाबले हमें कल देखने को मिले।
जी
जापान ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आगाज आज से हो गया। आइए जानते हैं इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय दल को अपने किन खिलाड़ियों से सबसे ज्यादा उम्मीद होगी।
भारत के शीर्ष बैडमिंटन खिलाड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जापान ओपन सुपर 750 टूर्नामेंट में खिताब जीतने के इरादे से कोर्ट में उतरेंगे। दुनिया की नंबर 15 रैंकिंग पर काबिज सात्विक चिराग की जोड़ी इस सीजन में 3 सेमीफाइनल तक का सफर तय कर चुकी है। ये जोड़ी का पहला मुकाबला कल कोरिया के कांग मिन ह्यूक और की डोंग जू की जोड़ी से होगा। सिंगल्स में भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के लिए ये टूर्नामेंट अपनी लक्ष्य तलाशने का एक सुनहरा मौका होगा। लक्ष्य अपने अभियान की शुरुआत चीन के वांग झेंग जिंग के खिलाफ करेंगे, जबकि पीवी सिंधु कोरिया की सिम यू जिन के खिलाफ उतरेंगी। वहीं अन्य खिलाड़ियों में उन्नति हुड्डा का सामना पहले दौर में थाईलैंड की सातवीं वरीय पौर्णपावी चोचुवोंग से होगा। अनुपमा उपाध्याय का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। पुरुष डबल्स में हरिहरन अमसा करुणन और रूबन कुमार रत्ना सभापति की जोड़ी तथा महिला डबल्स में कवि प्रिया सेल्वम सिमरन सिंघी की जोड़ियां भारतीय चुनौती पेश करेंगी। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
बिल्कुल, मैदान एक तरीके से सेट हो चुका है और शुरुआती मुकाबले भी शुरू हो गए हैं, जहां पे भारत की
रितु परना और स्विता परना ये दोनों आज डबल्स के मैच में विमेंस डबल्स का मैच हार गई। हाँ जी
जी, भारत के लिए हाँ थोड़ी सी निराशाजनक शुरुआत कही जा सकती है, लेकिन जो मेन नजरें हैं, जो मुख्य नजरें लोगों की होने वाली हैं, वो जिन स्टारों पर हैं उनकी लय पे क्या कहेंगे?
देखिए, अभी तो लक्ष्य सेन का परफॉर्मेंस कोई बहुत अच्छा नहीं जा रहा है। इनका जो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है वो ऑल इंग्लैंड के क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच के उसमें हार गए थे। उनको थोड़ी सी इंजरीज हैं, उसके अलावा पीवी सिंधु भी जो हैं उनको भी इंजरी रही है काफी टाइम तक। कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद जो है उनका परफॉर्मेंस, जिस जहाँ उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वहाँ के बाद उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं जा रहा है, बिकॉज ऑफ हील इंजरी हो या और भी कोई हैमस्ट्रिंग इंजरी हो। तो डेफिनेटली, और उनका बेस्ट परफॉर्मेंस इस साल भी रहा है जो इंडिया ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। तो दोनों क्वार्टर फाइनल, एक ऑल इंग्लैंड के क्वार्टर फाइनल में हार गया, दूसरा इंडिया ओपन के जो होम ग्राउंड पे हो रहा था उसमें हार गया। तो डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी है एक और, लेकिन कॉम्पिटिशन क्योंकि सुपर 750 का कॉम्पिटिशन है, मतलब बहुत ही इसमें श्रेणियां होती हैं शक्ति जी, इसमें सुपर 1000 होती है, 750 होती है, 500 होती है, 350 होती है। तो 750 जो हम मानेंगे बहुत ही टफ कंपटीशन, इसमें वर्ल्ड के नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरह के प्लेयर्स खेलते हैं। और जैसे आप देखिए बोथ पीवी सिंधु की और लक्ष्य सेन की जो रैंकिंग है काफी डाउन होती जा रही है बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। और जो है और भी बड़े बड़े टूर्नामेंट्स आने वाले हैं, तो अगर इस ये जो है क्रूशियल फेज है जहां ये इंजरी से उभर के आए हैं और इनको काफी एक्सपोजर भी मिल चुका है, 5-6 टूर्नामेंट्स खेल चुके हैं इस साल में, तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि दिस शुड बी द स्टेपिंग स्टोन जहां से ये और आगे अपना परफॉर्मेंस ले जाएं। थोड़ा सा सेमीफाइनल तक पहुंचेंगे तो भी एक हमें एक आशा जगेगी कि डेफिनेटली हाँ इंडियन टीम का परफॉर्मेंस अच्छा हो, इंडियन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है। एक टाइम पे यही प्लेयर्स जो होते थे अपना, स्पेशली पीवी सिंधु होती थी, वर्ल्ड चैंपियन वर्ल्ड चैंपियन भी बनी है, ओलंपिक दो बार ओलंपिक ब्रोंज मेडल भी जीती है। तो डेफिनेटली यहां से इनको एक स्टेपिंग स्टोन मिलना चाहिए ताकि वो अपना परफॉर्मेंस और ऊपर ले जा सकें।
जी बिल्कुल, भारत को अपने दल से काफी उम्मीदें होंगी और शायद उम्मीदें ये भी होंगी कि सात्विक की पूरी जोड़ी जो लगातार इस साल,
जी हाँ, उनके साथ तो ये चाह रही थी। सात्विक को जो है थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज रहे हैं और चिराग को भी जो है थोड़े से इंजरी इश्यूज रहे हैं, तो जिसके चलते जो है ये परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन होपफुली अब दोनों फिट है एंड दे कैन टेक द गेम टू द नेक्स्ट लेवल।
विश्व प्रसिद्ध एथलीट और सबसे उम्रदराज मैराथन धावक फौजा सिंह का कल निधन हो गया। 114 वर्ष के फौजा सिंह सोमवार को सुबह सैर पर निकले थे, तभी एक गाड़ी ने उनको टक्कर मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने 100 वर्ष की आयु में साल 2011 में टोरंटो मैराथन में 8 घंटे 11 मिनट और 6 सेकंड में इस रेस को पूरा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया था और वो 100 वर्ष की उम्र में ये कीर्तिमान स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति हैं। और श्रोताओं, अब समय हो गया आप सभी से विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। अजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद शक्ति जी।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, नमस्कार।